نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد.
تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک شخص اگر شرابی ہے, اپنے لیے شراب کو پسند کرتا ہے, تو کامل مومن بننے کے لیے سب کے لیے شراب پسند کرنا پڑے گا. ایک شخص جوا کھیلنے کو پسند کرتا ہے, تو کامل مومن بننے کے لیے اسے دوسروں کے لیے بھی جوا کو پسند کرنا پڑے گا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے حدیث پر, اس لیے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جسے اپنے لیے کرتا ہے. تو اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرنا ضروری ہے, تب جا کر کے کامل مومن بنے گا. تو اپنے لیے تو شراب پسند کرتا ہے, اپنے لیے ڈرگ پسند کرتا ہے, اپنے لیے جھوٹ پسند کرتا ہے, تو کیا دوسروں کے لیے بھی پسند کرے؟ یہ سوال پیدا ہوا. تو یہاں میں ایک بات ضمن یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں یا احادیث شریفہ میں جب ہمارے ذہنوں میں ایسا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے جسے اشکال کہتے ہیں, کہ یہاں ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے, ایک سوال پیدا ہو رہا ہے, ایک ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے, ایک کوئری پیدا ہو رہی ہے, تو یہ سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ اس لیے نہیں آتا کہ قرآن کی کسی آیت میں یا احادیث شریفہ میں سے کسی حدیث میں کوئی نقص ہے. یہ جو دیوار ہے سامنے, اس دیوار پر اگر کوئی بہت خوبصورت فریم لگاؤ, پہاڑ اور درخت اور نہر وغیرہ کا ایک بہت خوشنما منظر ہو, اس کی فریم آپ اس پر لگاؤ, اب اس میں اگر کسی کو نقص نظر آتا ہے تو اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ اس میں واقعی نقص ہے, وہ جس نے بھی اس کو پینٹنگ کیا ہے تو پینٹنگ کرنے والا درخت کو مکمل کرنا بھول گیا ہے, نقص رہ گیا ہے, اس میں کمی ہے. تو جب اس کو دیکھے گا تو اسے کمی نظر آئے گی, اور کمی نظر آئے گی تو سوال پیدا ہوگا. سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ عجیب درخت ہے کہ ایک طرف تو شاخیں ہیں, برانچز ہیں, اور دوسری طرف نہیں ہے. دل میں ایک قسم کی جو جستجو ہوتی ہے وہ نقص دیکھ کر, تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ کمی وہاں ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کوئی کمی نہیں ہے لیکن دیکھنے والے کی آنکھ میں کمی ہے. تو چشمے کے نمبر زیادہ ہے اور چشمے کے بغیر دیکھے گا تو ظاہر ہے کہ اسے جیسا پکچر ہے ویسا نظر نہیں آئے گا. تو احادیث شریفہ اور آیات قرآنیہ میں جب کوئی اشکال ہمیں پیدا ہوتا ہے, جب کوئی سوال پیدا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے نہیں کہ قرآن یا حدیث میں کوئی نقص ہے, وہ اس وجہ سے کہ ہماری عقل کی جو آنکھ ہے, ہماری جو بصیرت والی آنکھ ہے, اس میں نقص ہے. اسی وجہ سے مجھے سوال پیدا ہوتا ہے, مجھے سوال پیدا ہوتا ہے, میں کسی عالم کے سامنے پیش کرتا ہوں تو وہ اس کا جواب دے دیتا ہے, اور جب وہ جواب دیتا ہے تو مجھے تسلی بھی ہو جاتی ہے तो मुझे सवाल पैदा हुआ इसलिए कि मेरी बसीरत में नुक्स है, और उस आलिम ने जवाब दिया इसलिए कि उसकी बसीरत में नुक्स नहीं है। ये हमेशा जहन में बात याद रखो। बास जगह पर हमें ऐसा नजर आता है कि फुला हदीस में ये है और फुला हदीस में ये है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मालूम हो रहा है, तआरुज मालूम हो रहा है। तो हदीसों में कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, तआरुज कहीं नहीं होता। इसलिए कि जैसे कुरान के बारे में यह है कि कुरान में कहीं भी तआरुज नहीं है, कुरान में कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से उतरा है और अल्लाह ताला शानो हर ऐब से पाक है। और इंसान जो है वो तो खता का पुतला है, तो इंसान के कलाम में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। मसलन आज मैं ऐसा कहूं कि मेरी जब 12 साल की उम्र थी तब मैंने ये काम किया था, और हो सकता है कि 20 साल के बाद मैं भूल जाऊं और मैं ऐसा कहूं कि मेरी 13 साल की उम्र थी तब मैंने ये काम किया था। लेकिन अल्लाह तो भूलता नहीं है, अल्लाह पर निस्यान तारी नहीं होता, सहव तारी नहीं होता, वो गलती नहीं कर सकता। इसीलिए ये मुजमा अली मसला है कि कुरान में किसी जगह पर तआरुज नहीं होगा, और कुरान ने अपनी हक्कानियत के सबूत के लिए इसको बतौर दलील के पेश किया है। कुरान ने खुद अपने कलाम इलाही होने के लिए बतौर दलील के पेश किया है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, अफला यतदब्बरून अल कुरान। ये इस्लाम का इनकार करने वाले और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इनकार करने वाले, आखिरत का इनकार करने वाले, कुरान मजीद के कलाम इलाही होने का इनकार करने वाले कुरान में गौर नहीं करते। ये जो कह रहे हैं कि ऊपर से कुछ नहीं आया है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिख लिया है, ये कुरान में गौर नहीं करते। वलव कान मिन इंद गैरिल्लाह, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और के पास से आया हुआ होता, यानी मखलूक में से किसी ने इसे बनाया हुआ होता, तो इतनी जखीम किताब में लवजदु फीह इख्तिलाफन कसीरा, इसमें बहुत इख्तिलाफ पाया जाता। लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र पूरे कुरान में फैला हुआ है, किसी जगह तआरुज नजर नहीं आता। यहां जो किस्सा है वो यहां के साथ फिट हो जाता है, यहां जो किस्सा है वो यहां के साथ फिट हो जाता है, यहां जो किस्सा है वो यहां के साथ फिट हो जाता है। तो कुरान चूंकि वही इलाही है इसलिए उसमें तआरुज नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं वो भी तो वही है, वही है गैर मतलू, उसमें भी किसी किस्म का तआरुज नहीं हो सकता, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता, डिस्क्रेपेंसी नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं हो सकती। अगर कुरान और हदीस में हमें कोई इश्काल पैदा हो, कुरान और हदीस में हमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर आए, कुरान और हदीस में हमें कोई नुक्स नजर आए, कोई बात हमें समझ में ना आए, तो ये कुरान और हदीस की कमी नहीं है, हमारी समझ की कमी है। इसीलिए जब हम तहकीक करेंगे और इसके माहिरीन के पास जाएंगे और वो उसको हमारे लिए समझाएंगे तो हमें फौरन समझ में आ जाएगा। तो जिन लोगों ने हमें समझाया है और जिनकी बात हमें भी समझ में आ जाती है, दरसे हदीस दरसे कुरान में दर्स देने वाला कहता है कि यहां एक इश्काल पैदा होता है, यहां एक सवाल पैदा होता है, और जब वो सवाल बयान करता है तो सब हैरत में पड़ जाते हैं कि यार वाकई बहुत बड़ा एतराज है, बहुत बड़ा सवाल है। और फिर जब जवाब दिया जाता है कि भाई फुला ने यूं कहा है और फुला ने यूं कहा है और फुला ने यूं कहा है, तो ऐसा मामला हल हो जाता है कि फिर अकल हैरान हो जाती है, फिर अकल हैरान हो जाती है। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, सोच रहे थे कि बहुत बड़ा है तेरा अजीब, इसका जवाब कैसे देंगे। तो जवाब देने वाले भी कोई है ना। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, ये सब पुराने लोग। फिर बाद के लोग शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, उसके बाद शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं। इनकी बातें जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो तसल्ली हो जाती है कि नहीं जी? और इनकी बातें सुनने के बाद फिर वो कमी हमें नजर नहीं आती। मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि हमें जो कमी नजर आ रही थी वो हमारी अकल की कमी की वजह से, और अब हमें तसल्ली इसलिए हो गई कि हमने उन लोगों की बात सुनी जिनकी अकल में कोई कमी नहीं थी, वो पूरी बसीरत वाले थे। और ये जो बसीरत और जो अकल कुरान और हदीस को समझने के लिए चाहिए वो तकवे वाले शख्स के पास होती है। अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी में बहुत ऊंची डिग्री हासिल कर ले एमए की और पीएचडी की किसी भी फील्ड में, और आप कहें कि भाई इसकी अकल तो बहुत आला दर्जे की होगी, तो भाई होगी आला दर्जे की, तभी तो पीएचडी उसने किया है। लेकिन अगर कोई पीएचडी किसी सब्जेक्ट में कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अकल कुरान और हदीस में भी चलेगी। कुरान और हदीस को समझने के लिए इस अकल के साथ तकवे की रोशनी भी चाहिए, दो रोशनियां चाहिए, अकल की रोशनी चाहिए और तकवे की रोशनी चाहिए। जैसे अभी ये लाइट अगर ऑफ हो जाए तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा, हालांकि आंखों की रोशनी मौजूद है। और ये लाइट ऑन रहे और आंखें बंद हो जाए, अंधा हो जाए, तो भी नजर नहीं आएगा। नजर आने के लिए दो रोशनियों की जरूरत है, आंख की रोशनी और दूसरी रोशनी। तो दिन को वो सूरज की रोशनी होती है, रात को ये लाइट की रोशनी, चिराग की रोशनी। दो रोशनियों में से एक रोशनी नहीं होगी तो फिर वो चीज या तो बिल्कुल नजर नहीं आएगी या नजर आएगी मगर गलत नजर आएगी। तो इसी तरह किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों को समझने के लिए, वहय को समझने के लिए भी दो रोशनियों की जरूरत है, एक अकल की रोशनी और दूसरी तकवे की रोशनी। तकवे की रोशनी और अकल की रोशनी जब ये दोनों जमा हो जाए तो उसको तफक्कुह कहते हैं। अकल की रोशनी और तकवे की रोशनी जब ये जमा हो जाए तो उसको तफक्कुह कहते हैं। और ये तफक्कुह जो है यानी आला दर्जे की अकल और आला दर्जे का तकवा, अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं जिसको अल्लाह बहुत बड़ी खैर देना चाहते हैं। इसीलिए हदीस में क्या है, इरशाद फरमाए मन युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि जिसके साथ अल्लाह ताला शानहु बहुत बड़ी और बहुत वसी, बहुत बड़ी अजीम शान और बहुत आम भलाई का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला शानहु उसे क्या अता फरमाते हैं, दीन में तफक्कुह नसीब फरमाते हैं, यानी उसकी अकल को भी कामिल कर देते हैं और उसके तकवे को भी कामिल कर देते हैं। तो जब अकल भी आला दर्जे की हो और तकवा भी आला दर्जे का, तब उसे सही समझ में आएगा। सिर्फ प्रोफेसर हो जाना और पीएचडी एमए बीए हासिल करके फिर ये समझ लेना कि चूंकि मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूं इसलिए मैं कुरान को समझ सकूंगा हदीस को नहीं, इसके लिए तकवे की जरूरत होती है। इसीलिए हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जो भाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने उन पर खत लिखा कि एक लंबी मुद्दत हो गई है तुम्हारे अहवाल मुझे मालूम नहीं हो रहे हैं। तो अहवाल जो है, अहवाल जरूरी है कि मुरीद अपने शेख को मुत्तले करता रहे। मुरीद के लिए जरूरी है कि अपने शेख को अपने अहवाल से वाकिफ रखे। इस्लाह के लिए जरूरी है, तज़किया के लिए जरूरी है, کہ مرید اپنے شیخ کو اپنے احوال سے واقف رکھے. چار باتیں بتلاتے ہیں، دو باتوں کو کرنا ہے، دو باتوں سے بچنا ہے. کرنے کی دو باتیں کون سی ہے؟ گناہوں سے ہر حال میں بچنا ہے، کبائر سے بھی بچنا ہے، صغائر سے بھی بچنا ہے. تو گناہوں سے بچنا ہے، کبائر سے بھی، صغائر سے بھی. ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ گناہ نہ ہو، اور اللہ تعالی شانہ سے خوب دعا کرو. ایک مسنون دعا ہے، اللہم باعد بینی وبین الخطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ، آپ نے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان رکھی ہے، ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جتنی دوری رکھی ہے، میری ذات اور گناہ کے درمیان اتنی ہی دوری پیدا کر دیجیے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی. اے اللہ، گناہوں کو چھڑوا کر میرے اوپر رحم فرما دے، گناہوں کو چھڑوا کر میرے اوپر رحم فرما دے. ابدا ما ابقیتنی، ہمیشہ کے لیے جب تک تو مجھے باقی رکھے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. اے اللہ، آپ ہمارے لیے تقسیم کر دیجئے آپ کی خشیت میں سے، آپ کے ڈر، آپ کے خوف میں سے اتنا ہمیں دے دیجئے، اتنی خشیت دے دیجئے کہ جس خشیت کے نتیجے میں ہماری نیند بھی خراب نہ ہو، کھانا پینا بھی برباد نہ ہو، مگر اتنی خشیت دل میں پیدا ہو جائے کہ آپ اس خشیت کے ذریعے ہمارے اور گناہوں کے درمیان ایک حائل پیدا کر دیں. تو دعا بھی کرو، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرو. اور گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنا ویل پاور استعمال کرے، ہمت سے کام لے، ڈٹرمینیشن سے کام لے. گناہوں سے ایسے ہی نہیں بچا جاتا، گناہوں سے بچنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، ریزسٹ کرنا پڑتا ہے. ریزسٹ تو پہلی مرتبہ ریزسٹ کرے گا بہت مشکل لگے گا، دوسری مرتبہ بھی بہت مشکل، تیسری مرتبہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک ڈرگ اڈکٹ ہے، اس کو ڈرگ کا اڈکشن ہو گیا ہے. پہلی مرتبہ بہت مشکل، دوسری مرتبہ بہت مشکل، تیسری مرتبہ بہت مشکل، مگر اس کا دوسرا کوئی علاج نہیں، یہی علاج ہے، ریزسٹ کرنا یہی علاج ہے، ہمت سے کام لینا اور رکنا یہی علاج ہے. اگر یہ کرتا رہے گا تو ایک ہفتے کے بعد آسان ہو جائے گا، دو ہفتے کے بعد اور آسان، تین ہفتے کے بعد اور آسان، اور چھ مہینے کے بعد اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہ لت تھی. تو ایک کام کرنا ہے، گناہوں سے بچنا، کبائر سے بھی بچنا، صغائر سے بھی بچنا، ہونا ہی نہیں چاہیے گناہ، اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ. یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا تو اب 8-10 مرتبہ کر لیتے ہیں اور پھر دیکھیں گے، نہیں نہیں، فوراً توبہ. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. جیسے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط کیا تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں. دوسری چیز جس سے بچنا ہے وہ کیا ہے؟ لایانی سے بچنا ہے. اس لیے کہ لایانی یہ معصیت کا دروازہ ہے، جیسے بد نظری زنا کا دروازہ ہے، تو بد نظری ہی کو روک دیا، تو ہمیں بھی لایانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس لیے کہ جو لایانی کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام، ایسی بات جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں. تو جب کوئی لایانی میں مبتلا ہوتا ہے تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لایانی کا ایک سرا ادھر ہے تو دوسرا سرا معصیت سے لگا ہوا ہے. لایانی کا ایک کنارہ ادھر ہے تو دوسرا کنارہ گناہ سے لگا ہوا ہے. यानी देर सवेर गुनाह में मुब्तला हो जाएगा, लायानी में मुब्तला रहने वाला शख्स। तो गुनाहों से भी हमें दूर रहना है और लायानी से भी दूर रहना है, ये दो बचने के काम है और करने के दो काम है। ये करने के दो काम अगर कोई करेगा बहुत एहतिमाम से तो ये रिजिस्ट करने का पावर पैदा होगा, रिजिस्ट करने का स्टैमिना पैदा होगा, लायानी को रिजिस्ट करने का और गुनाहों को रिजिस्ट करने का। पहला काम है कसरत जिक्र और दूसरा काम है सोहबत साले। कसरत जिक्र, जिक्र खूब करें। तीसरा कलिमा 100 मरतबा पढ़ो, कलिमा तैयबा 100 मरतबा पढ़ो, इस्तिगफार 100 मरतबा पढ़ो, दुरूद पाक 100 मरतबा पढ़ो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम 100 मरतबा पढ़ो, 200 मरतबा पढ़ो, 300 मरतबा पढ़ो, हाथ में तस्बीह रखो, चलते फिरते अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो, मसनून दुआएं याद करो, खाने से पहले अल्लाह का नाम लो, खाने के बाद अल्लाह का नाम लो, पानी पीने से पहले अल्लाह का नाम लो, पानी पीने के बाद अल्लाह का नाम लो, बैतुल खला में जाने से पहले अल्लाह का नाम लो, बैतुल खला से निकलने के बाद अल्लाह का नाम लो, हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। जितना ज्यादा जिक्र होगा दिल मुनव्वर होगा, और जब दिल मुनव्वर होगा तो दिल हेल्थी होगा, और जब दिल हेल्थी हो जाता है तो ये दिल फिर गुनाहों से बचने की सलाहियत अपने अंदर पा लेता है। हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, ये जिक्रुल्लाह कसरत जिक्र, खूब जिक्र हो, खूब जिक्र हो। उसका तरीका यह है कि मुकर्रर करे अपने ऊपर कि कम से कम रोजाना 100 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ूंगा, कम से कम कलिमा तैयबा 100 मरतबा पढ़ूंगा, कम से कम 100 मरतबा इस्तिगफार पढ़ूंगा, कम से कम दुरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ूंगा, 200 मरतबा पढ़ूंगा, 300 मरतबा। तो पहले कम मकदार शुरू करके धीरे 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 बढ़ाओ ताकि 24 घंटे में जितना फारिग वक्त है वो जिक्रुल्लाह में ऑक्यूपाई हो जाए। अल्लाह ताला शानु हमें तौफीक अता फरमाए। हजरत जी मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने अर्ज किया था कि आपकी सवाने में मौलाना शहीद साहिब ने लिखा है कि रोजाना जो जिक्र उनको अपने शेख की तरफ से दिया गया था उस जिक्र को बढ़ाते 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 सिर्फ इसमें जात का जिक्र यानी अल्लाह का जिक्र इसमें जात का रोजाना 70,000 मरतबा करते थे। और हमारे जिस्म में 6 लतीफे हैं, लताइफ सित्ता, 6 लतीफे हैं, 6 लतीफे, एक है लतीफा कल्ब, लतीफा रूह, लतीफा नफ्स, लतीफा सिर, लतीफा खफी, लतीफा अखफा, ये 6 लतीफे हैं। तो जैसे हम जिक्र करते हैं और जिक्र करके ये लतीफे कल्ब पर मेहनत करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और नक्शबंदिया के अंदर मुराकबा करते हैं कि दिल जो है वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ये लतीफे कल्ब। तो लतीफे रूह उस पर मेहनत की जाती थी पहले, फिर लतीफे नफ्स पर, फिर लतीफे सिर पर, फिर लतीफे खफी पर, लतीफे अखवा पर, इन 6 के 6 लतीफों पर पहले मेहनत कराई जाती थी। अब कवा कमजोर हो गए तो सिर्फ लतीफे कल्ब पर मेहनत कराई जाती है। और ये उसूल पेशे नजर है कि इदा सलूहत सलूहल जसदु कुल्लुहु, तो खलीफा गुलाम रसूल साहिब रहमतुल्लाह अलैह उनके हालात में है कि वो रोजाना 125,000 मरतबा इसमें जात पढ़ते थे हर लतीफे पर। सवा लाख 125,000 टाइम्स एक लतीफे पर। तो 6 लतीफे पर 6 लाख हो गए, और 25-25 हजार को आगे गिने तो 1.5 लाख ये हो गया। तो 7.5 लाख मरतबा इस अल्लाह अल्लाह करते थे। अब हम लोग तो सब अकल परस्त हैं, इसलिए कितने लोगों के जहनों में अभी यहां आ रहा होगा कि 7.5 लाख मरतबा अगर अल्लाह अल्लाह करे तो 24 घंटे तो इसी में निकल जावे। तो मेराज का किस्सा पढ़ा है कि नहीं आप हजरत ने, और मेराज के किस्से पर यकीन है कि नहीं जी? अल्लाह ताला वक्त में बरकत पैदा कर सकते हैं कि नहीं? एक सेकंड भी नहीं हुआ दूसरों के लिए, एक सेकंड भी नहीं हुआ दूसरे लोगों ने एक कदम भी नहीं उठा सके, इतनी देर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा चौड़ा सफर करके वापस आ गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजिजा आता हुआ था अल्लाह की तरफ से, वो मौजिजा उम्मत में चलता है आगे, जिसको करामत कहते हैं। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिजे ही की बरकत है कि आपकी उम्मत में ऐसे अफराद पैदा हुए कि जिनके हाथों करामत सुदूर होती है। इसमें बंदे का कोई कमल नहीं है। हाथ नबी का, कुदरत अल्लाह की। हाथ नबी का, कुदरत अल्लाह की, इसको मौजिजा कहते हैं। कुदरत अल्लाह की, हाथ नबी का, इसे मौजिजा कहते हैं। और कुदरत अल्लाह की और हाथ वली का, इसे करामत कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आनन फानन, वो मौजिजा तो ये करामत हो सकती है, अल्लाह ताला शानहु बरकत दे सकते हैं। पहले भी मैंने आप हजरात को कहा कि अरवाह सलासा में लिखा है और सनद के साथ लिखा है कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आपके बारे में ये सुना है कि आप पूरा कुरान मजीद असर और मगरिब के दरमियान पढ़ जाते हैं। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में क्या है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उन पर जबूर नाजिल हुई थी। तो बुखारी शरीफ में ये रिवायत है कि दाऊद अलैहिस्सलाम हुक्म करते थे कि मुझे सफर करना है, मेरे लिए घोड़ा तैयार करो। तो घोड़ा तैयार हो जाता था, घोड़ा तैयार हो जाता था, और वो रुकाब में कदम रखते थे, स्टीरअप में एक कदम। तो रुकाब में कदम यूं रखते थे और कदम रख करके जबूर पढ़ना शुरू करते थे, और दूसरा कदम दूसरे रुकाब में आता था उससे पहले जबूर खत्म हो जाती थी। ये तो बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो नबी का मौजिजा हुआ या नहीं? तो अल्लाह ताला ने अंबिया को जो मौजिजात दिए हैं उन्हीं मौजिजात की बरकत से उम्मत मोहम्मदिया अला साहिबिहा अल्फ अल्फ सलातियों व सलाम में ऐसे अफराद हैं कि जिनको अल्लाह ताला शानहु ने करामात से नवाजा है। अल्लाह ताला शानहु कभी कभी जमीन को समेट देते हैं, जमीन को समेट देते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग में मशगूल हैं, और उन्होंने कहा कि जाओ जाकर के, उन्होंने देखा कि दुश्मन के नरगे में हम आ गए हैं, क्या किया जाए? तो कहा कि हमारा दूसरा लश्कर दूसरे इलाके में है, तो उनको मदद के लिए बुलाना चाहिए कमक के तौर पर। तो कहा कि जल्दी जाओ। तो अब्दुल्लाह इब्ने जाफर रजी अल्लाह उन्होंने एक आदमी को रवाना किया, ये हजरत जाफर तैयार के बेटे हैं, अब्दुल्लाह इब्ने जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजत भाई। तो वो फजर के बाद, सुबह सादिक के बाद फजर पड़ी और फजर पढ़ करके रवाना हो गए, और घोड़े को एड़ लगाई, अकेले, अकेला आदमी ज्यादा तेजी से जा सकता है पूरे काफले के बनिस्बत, घोड़े को एड़ लगाई और तेजी से खूब, इसलिए कि फिक्र थी यहां। तो फजर की नमाज के बाद चले हैं मुसलसल, रास्ते में घोड़ा थका होगा, थोड़ा बहुत आराम किया होगा उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक, तो असर के वक्त यहां पहुंचे। اور اثر کے وقت پہنچے اور عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کی جو یہاں کمانڈر ان چیف تھے اور ان سے کہا کہ عبداللہ ابن جعفر نے مجھے بھیجا ہے دشمن کے نرغے میں آ گئے ہیں اور آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے تو عبداللہ ابن انیس رضی اللہ انہوں نے اعلان کیا کہ سفر ہے ابھی سفر رحیل سفر ہے جلدی سے وضو وغیرہ کرو اور عصر کی نماز پڑھو یعنی وضو کیا سب نے پورے لشکر نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد عصر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ظاہر ہے دیر لگتی ہے پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ سب اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے سامان وامن لاد کر اور گھوڑے کو ایڑ لگانے سے پہلے عبداللہ ابن انیس نے ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہا کہ اللہم اطوی لنا الارض اے اللہ تیرے بندے تجھ پر ایمان رکھنے والے وہاں دشمنوں کے نرغے میں آ گئے ہیں اور اگر ہمیں بھی اتنی ہی دیر لگی جتنی اس کو یہاں آنے میں لگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو آپ ہمارے لیے زمین کو مختصر کر دیجئے یہ جو یہاں سے وہاں تک کا فاصلہ ہے زمین کو لپیٹ دیجئے سمیٹ لیجئے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پورا لشکر چلا سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ گئی تو دیکھو زمین بھی سمٹ جاتی ہے کہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں کھڑے ہیں مدینہ منورہ میں ممبر کے اوپر کھڑے ہیں اور شام میں جنگ چل رہی ہے شام میں اور حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا اور خطبے کے دوران کیا فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل اے ساریہ پہاڑ کا سہارا لو اے ساریہ پہاڑ کا سہارا لو اور پھر اپنا خطبہ جاری کر دیا اتنا کہہ کر کے خطبہ جاری کر دیا اب ساریہ تو وہ لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے جن کو شام روانہ کیا تھا دشمنوں سے لڑنے کے لیے اب لوگ حیران ہیں کہ ساریہ تو مدینہ میں ہے نہیں اور امیر المومنین لیکن امیر المومنین کو پوچھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی لیکن جب وہ لشکر واپس آیا تو ان سے پوچھا کہ کوئی خاص واقعہ ان سے پوچھا کوئی عجیب واقعہ پیش آیا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں ایک دن ہم گر گئے تھے دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تھے اور ہم بہت پریشان تھے کہ اب کیسے نکلے اس میں سے اور ان پر قابو کیسے پائیں یہ تو ان کا قابو بڑھ رہا ہے ہمارے اوپر تو کہ بس اس فکر میں تھے کہ امیر المومنین کی آواز آئی یا ساریہ الجبل الجبل کہ اے ساریہ پہاڑ کا سہارا لو تو ہم نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا ہمیں پہاڑ نظر آ گیا تو پورا لشکر پہاڑ کے دامن میں آ گیا اب پہاڑ پیچھے اور چاروں طرف سے جو نرغے میں تھے اس سے ہم نکل گئے اور ہم نے وہاں پہاڑ کا سہارا لے کر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور فتح پائی تو دیکھو سمٹ جاتا ہے کہ نہیں زمین جب سمٹ سکتی ہے تو وقت نہیں سمٹ سکتا بھائی سمجھ میں آ رہا ہے ہاں تو یہ تیل وقت اور تیل ارض یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں تیل وقت اور تیل ارض وقت بھی مختصر ہو سکتا ہے اور زمین بھی مختصر ہو سکتی ہے تو جو اللہ وقت کو مختصر کر سکتا ہے زمین کو مختصر کر سکتا ہے وہ پھیلا بھی تو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم صبح سے شام چلتی تھی اور رات کو سوتی تھی تو اپنے آپ کو وہیں پاتی تھی دیکھو زمین بہت لمبی ہو گئی تھی وہ طے ہی نہیں ہو رہی تھی ہے کہ نہیں تو زمین مختصر ہو سکتی ہے اور لمبی بھی ہو سکتی ہے اور وقت مختصر ہو سکتا ہے تو وقت بھی لمبا ہو سکتا ہے کہ میرے لیے پانچ منٹ ہے مگر دوسرے کے لیے وہی ایک گھنٹہ ہے تو میں ایک رکو پڑھوں گا اور وہ جو ہے چار سپارے پڑ جائے گا اس لیے اس قسم کے واقعات پر نکیر وہی کر سکتا ہے جو عقل پرست ہو اور جو کرامات کو مانتا نہ ہو حالانکہ کرامات کو ماننا یہ تو ہمارے عقیدے میں سے ہے کرامات الاولیاء حق اولیاء کی کرامتیں برحق ہیں یہ ہماری عقیدے کا جز ہے جو اللہ کی قدرت کو مانتا نہ ہو جو معجزات کو مانتا نہ ہو جو کرامات کو مانتا نہ ہو وہ اعتراض کرتا ہے اس قسم کے لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے کہ پوری پوری رات بیس سال تک تیس سال تک کیسے ایک آدمی پورا قرآن پڑھ سکتا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ بھائی عقل سے اوپر کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اللہ تعالی شان وہ برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो हजरत दाऊद अलैह सलाम इतनी देर में जबूर पढ़ लेते थे, जितना भी हिस्सा था पढ़ लेते थे। तो भाई एक रुकू भी पढ़ना, एक रुकू इतने में पढ़ ले आदमी, पूरी वो जबूर पढ़ लेते थे। तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह असर से मगरिब तक में पूरा कुरान पढ़ लेते थे। तो लोगों ने इसरार किया कि आप हमें पढ़ करके दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि असर की नमाज के बाद फुना पुल के पास सब आ जाना। असर की नमाज पढ़ी लोगों ने, और मिसले सानी पे पढ़ते हैं हनफी लोग, तो असर की नमाज पढ़ी और असर की नमाज पढ़ने के बाद पुल के पास सब इकट्ठे हुए, और पुल के पास सब इकट्ठे हो गए। उसके बाद उन्होंने शुरू किया, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين। सब सुन रहे हैं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता तजवीद के साथ खुश इलाहानी के साथ तिलावत कलाम पाक चल रही है। इधर वन्नास तक पहुंचे और उधर सूरज गुरूब हुआ। तो 7.5 लाख मरतबा अल्लाह अल्लाह कैसे हो सकता है? आप अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह आपसे सब कुछ करवाएगा। आप अल्लाह के हो जाओ, मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहु, जो अल्लाह का हो जाते है अल्लाह उसका हो जाता है। जिक्रुल्लाह में मशगूल रहो अपने आप को। शुरू शुरू में भारी लगेगा, शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा, शुरू शुरू में एक सिपारा पढ़ना हिमालय पहाड़ पर चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल लगेगा। लेकिन एक हफ्ते तक आप पढ़ो, फिर देखो कि वो एक सिपारे में कितना मजा आता है। जिक्र करो, शुरू कर दो, देखो एक महीने में कितना मजा आता है। तो जिक्रुल्लाह की कसरत, मसनून दुआएं याद करो, मसनून अजकार हादिस में जो वारिद हुए हैं ये कले में उनको पढ़ो, और चलते फिरते ए अल्लाह रहम फरमा दे, ए अल्लाह फजल फरमा दे, अल्लाह से ए अल्लाह आसानी पैदा फरमा, ए अल्लाह उसने खातिमा, ये भी जिक्र है, कुरान की तिलावत भी जिक्र है, यासीन शरीफ पढ़ते हैं भी अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह को याद करो। और सिर्फ जिक्र नहीं, कसरत है जिक्र, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ये ईमान वालों अल्लाह को खूब याद करो, इतना याद करो इतना याद करो। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह को इतना याद करो इतना याद करो इतना याद करो इतना याद करो कि दिल ऐसा जिक्रुल्लाह से मुनव्वर हो जाए कि अल्लाह की याद की कैफियत दिल की बाकी सारी कैफियत पर गालिब हो जाए। हसद मगलूब हो जाए, हसद भी दिल की कैफियत है, किब्र दिल की कैफियत है, हुब्बे माल दिल की कैफियत है, हुब्बे माल भी मगलूब हो जाए, किब्र भी मगलूब हो जाए, हसद भी मगलूब हो जाए, बुखल भी मगलूब हो जाए, सब चीजें मगलूब हो जाए, अल्लाह की याद गालिब आ जाए। इसलिए भाई कसरत जिक्र। मेरे हजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि चलते फिरते उठते बैठते मुराकबे एहसानी करो। क्या मतलब मुराकबे एहसानी? अंताबुद अल्लाह का अन्न का तरा फम तकुन तरा हो फू यरा, अल्लाह मुझे देख रहा है। तो चलते फिरते ऐसा दिमाग से सोचो कि मेरा अल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत से देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत से देख रहा है। कसरत जिक्र, हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। तो जब नूर से सीना भर जाएगा तो सारी नाजायज कैफियत दब जाएगी। जब सारी नाजायज कैफियत दब जाएगी तो फिर क्या होगा? दिल के अंदर सारे अच्छे अच्छे कामों के जज्बे पैदा होंगे, और जब अच्छे अच्छे कामों के जज्बे पैदा होंगे तो आजा और जवारे बॉडी से जो काम सादिर होंगे और वजूद में आएंगे वो अच्छे ही होंगे। तो फिर वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिएगा, और जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जीता है वो मरता भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है। तो हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। अल्लाह ताला शानू हमें तौफीक अता फरमाए। तो कसरत जिक्र, जिक्रुल्लाह की कसरत, और جو حضرات کسی شیخ سے بیعت ہیں وہ اس کثرت ذکر کے ساتھ شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات کی خوب پابندی کریں, اور معمولات کی پابندی کر کے اس میں ترقی کریں, ترقی کریں کہ دل دماغ ذاکر ہو جائے, رواں رواں ذاکر ہو جائے, بال بال ذاکر ہو جائے. اور جو کسی سے بیعت نہیں ہے تو عادت اللہ یہی ہے ہمارے یہ غفلت کے دور میں, دنیا طلبی کے دور میں, کہ جب تک کسی کو اپنا سرپرست نہیں بنایا جاتا, اپنا نگراں نہیں بنایا جاتا, اور اس کی سرپرستی میں دل کو ذاکر بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی, اس وقت تک دل ذاکر بنتا نہیں ہے. تو کسی شیخ سے اپنے آپ کو وابستہ کرو جس سے آپ کا دل لگتا ہو, جس پر آپ کو اطمینان محسوس ہوتا ہو, جس کی مجلس میں بیٹھ کر آخرت کی فکر بڑھتی ہو, آخرت کی رغبت بڑھتی ہو, اللہ کی محبت کو پانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہو, اللہ کے قریب ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہو. تعلق پیدا کرو, بیعت ہو جاؤ, اصلاحی تعلق قائم کرو, اور اس سے ذکر سیکھو. اور جب شیخ کا انتخاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسرا جو کام کرنا ہے, صحبت صالح, نیک آدمی کی صحبت. تو دو کام کرنے کے ہیں, دو کام بچنے کے ہیں, گناہوں سے بچنا ہے اور لایانی سے بچنا ہے. اور دو کام کرنے کے ہیں, کثرت ذکر, ذکر اللہ خوب کرنا ہے, اور بری صحبت سے بچنا ہے, اچھی صحبت اختیار کرنی ہے. صرف اچھی صحبت کافی نہیں ہے, بری صحبت سے بچنا, اس لیے کہ اچھی صحبت بمنزل دوا کے ہے اور بری صحبت بمنزل زہر کے ہے. تو دوا بھی پی رہا ہے, زہر بھی کھا رہا ہے, شفا کیسے ہوگی؟ تو اچھی صحبت اختیار کرنے سے بھی پہلے جو کام کرنا ہے وہ بری صحبت کو چھوڑنا ہے. بری صحبت سے آدمی دور رہے, بری صحبت سے آدمی دور رہے, بغیر ضرورت کے بری صحبت میں نہ جائے. اور بری صحبت انٹرنیٹ پر بھی بری صحبت مل سکتی ہے, سوشل میڈیا پر بری صحبت مل سکتی ہے, واٹس ایپ کے اوپر بری صحبت مل سکتی ہے, بری صحبت لٹریچر میں بھی مل سکتی ہے. برا آدمی ہے, بری چیز لکھی ہوئی ہے, یہ بری صحبت ہے. بری صحبت سے بچنا ہے, اور بری صحبت سے بچ کر اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے. اور اچھی صحبت کے کتنے درجے ہیں؟ تین درجے. ایک تو عام مومنین, عام مومنین میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جن سے معاصی کا صدور ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ معاصی میں مبتلا ہو لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے, شریف آدمی ہے. ہمارا دل کہتا ہے کہ نہیں, یہ فلم نہیں دیکھتا ہوگا, یہ میوزک نہیں سنتا ہوگا. ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہوگا, یہ سود نہیں کھاتا ہوگا. ہمارا دل یہ کہتا ہے یہ سود نہیں لیتا ہوگا. عام جو مومنین نیک ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اگر بیٹھنے کی نوبت آئے تو. اس سے اوپر والا درجہ وہ مشائخ جن پر ان کے بزرگوں نے اعتماد کیا ہے اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں بھی فائدہ محسوس ہوتا ہے, آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے, اللہ یاد آتا ہے اور علم ملتا ہے, کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہ حدیث میں تین علامتیں بتائی گئی ہیں صحبت صالح کی, کہ جب بھی ان کے پاس بیٹھو گے تو دنیا کی رغبت کم ہوگی, آخرت کی اور اللہ کی محبت کی رغبت بڑھے گی. اور نمبر دو ان کی مجلس میں اللہ یاد آتا ہے, تو آخرت یاد آئے گی, اللہ یاد آئے گا. دو, اور نمبر تین, ہر مجلس میں جب بھی اٹھیں گے تو اس کی گفتگو سے کوئی نہ کوئی نیا علم حاصل ہوگا, نئی بات معلوم ہوگی. ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو, اور ان میں سے بھی اعلی درجے کی صحبت ہمارے لیے ہمارے اپنے شیخ کی. اور اپنے شیخ کے پاس عقیدت کے ساتھ جانا ہے, محبت کے ساتھ جانا ہے, عظمت کے ساتھ جانا ہے, ادب کے ساتھ جانا ہے, طلب لے کر جانا ہے اور محتاج بن کر جانا ہے. خلوص کے ساتھ, اصلاح کی نیت سے, تزکیہ کی نیت سے. تو جیسے ذکر اللہ سے دل مضبوط ہوتا ہے, اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت سے بھی دل مضبوط ہوتا ہے. तो गुनाहों से दिल कमजोर होता है, लायाने से दिल कमजोर होता है। जिन चीजों से दिल कमजोर है उसे छोड़ दो। जिक्रुल्लाह से दिल मजबूत होता है, नेक सोहबत से दिल मजबूत होता है, उसको करो। ये चार काम है इस्लाह के लिए। कितने काम है? ये चार काम है। और पांचवा काम जिसके बारे में हजरत अकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पांचवा काम ये शर्त के दर्जे में है। शर्त, शर्त के दर्जे में का मतलब ये है कि इन चार कामों को करने से फायदा तब होगा जब ये पांचवा काम करेंगे। ये पांचवा काम करेंगे, जैसे वुजू जो है नमाज के लिए शर्त है। इसका मतलब यह है कि आप मस्जिद में भी आ जाओ, क्याम भी करो, रुकू भी करो, सज्दा भी करो, सब कुछ करो, मगर वुजू नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं। तो इन चार कामों को करने का फायदा तब नजर आएगा जबकि पांचवा काम करो जो कि शर्त के दर्जे में। और वो क्या है? अपने शेख को, अपने शेख को वक्तन फवक्तन एट इंटरवल्स अपने शेख को अपने हालात बतलाना, और हालात बतलाने के बाद शेख हमें जो कुछ कहे उस पर आंख बंद करके अमल करना। हमारे हालात बतलाने के नतीजे में शेख कुछ कहे उस पर भी अमल करना, या ये कि शेख हमारे अहवाल पर खुद मुत्तले हो जाए और हमें तंबीह करे, हमें मुतवज्जे करे, उस पर अमल करना। तो ये इत्तला और इत्तिबा बहुत जरूरी है, अहवाल बहुत जरूरी है। शेख के अहवाल जानना मुरीद के लिए जरूरी नहीं, लेकिन शेख के लिए मुरीद के अहवाल से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। इसलिए शेख ने जो कुछ कहा, डॉक्टर अब्दुल्लाह आरिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों से कहते थे कि हफ्ते में एक मरतबा हालात लिखो, हफ्ते में एक मरतबा हालात लिखो। तो डॉक्टर अब्दुल्लाह आरिफी रहमतुल्लाह अलैह लंबी मुद्दत तक मुरीद रहे। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के विसाल से पहले उनको खिलाफत भी मिली, कई सालों तक खलीफा भी रहे। लेकिन डॉक्टर अब्दुल्लाह आरिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब से मैं मुरीद हुआ उस वक्त से लेकर हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल तक कोई हफ्ता ऐसा नहीं गया कि मैंने हजरत की खिदमत में खत न लिखा हो। एक हफ्ता ऐसा नहीं गया। मेरे हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरे पास हजरत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के 1000 खतूत हैं। यानी जब मुरीद लिखता है तो शेख हर खत का जवाब तो नहीं देता, तो 1000 तो उनके शेख के जवाबात है, 1000। तो हाजी साहिब ने खतूत कितने लिखे होंगे? और हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं खत लिखता था, मैं खत लिखता था, और कहा कि खत लिखता था और मैं अंदाजा लगाता था कि मेरा खत पहुंच गया है और वहां से खत का जवाब चल पड़ा होगा। तो कहा कि जब मैं अंदाजा लगाता था कि वहां से खत चल पड़ा होगा तो मैं एक और खत यहां से रवाना कर देता था। और होता यह था कि शेख का खत मुरीद को मिलता था, उसी वक्त मुरीद को भी शेख का मिलता था। ये इत्तला और इत्तिबा, इत्तला ये खत लिखना, खत का जवाब लेना, उस पर अमल करना, ये इतना अहम काम है कि हजरत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो मुरीद दूर रहता है और अपने शेख की सोहबत पर कुदरत उसे नहीं है, तो मुकातबत ब मुताबअत कंटिन्यूटी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस रखना, मुकातबत ब मुताबअत कंटिन्यूटी के साथ अपने शेख के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करना, कायम मकाम है सोहबत शेख के, ये सोहबत शेख के कायम मकाम है। हजरत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हाजी साहिब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हजरत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि शेख का खत आया, शेख का खत आया, आप शेख की सोहबत में बैठ गए। हजरत मसीहुल शेख का खत आया, आप शेख की सोहबत में बैठ गए और खत पढ़ना शुरू किया شیخ کے ارشادات سے مستفید ہونے لگ گئی. اطلاع اور اتباع, اطلاع اور اتباع. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ پر خط لکھا کہ بہت دنوں سے آپ کے احوال معلوم نہیں ہوئے, بہت مدت سے احوال معلوم. بہت سے مرید ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھی ترقی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ذرا نوک پلک ٹھیک کرنی پڑتی ہے. ایک پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ بہت اچھی تحقیق کر رہا ہے, لیکن وہ پروفیسر تو نہیں ہے نا. اس کا جو نگراں ہے, اس کا جو شیخ ہے پی ایچ ڈی میں, وہ کئی سالوں سے پروفیسر ہے اور وہ کتنے تھیسز کو, کتنے مقالوں کو چیک کر چکا ہے. تو آپ کی تحقیق کتنی عمدہ کیوں نہ ہو, جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو نوک پلک ٹھیک کرے گا, وہ آپ کو اشارہ کر دے گا کہ ذرا فلاں کتاب بھی دیکھ لیجیے, دیکھو ذرا اور اچھا ہوگا. وہ آپ کو اشارہ کر دے گا کہ یہ پیراگراف ذرا آخر میں آتا تو اچھا ہوتا اور یہ پیراگراف شروع میں آ جاتا تو اچھا ہوتا. تو بہت سے مرید ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت پابند ہوتے ہیں معمولات کے, مجالس کے بھی بہت پابند ہوتے ہیں, جو سنتے ہیں عمل کرتے ہیں, لیکن اطلاع نہ کرنے کی وجہ سے شیخ کو جو کچھ ان کو تھوڑا بہت کہنا ہوتا ہے وہ شیخ کہہ نہیں پاتا. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ عالم غیب نہیں ہوتا, اسے خود بخود معلوم نہیں ہوتا. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ شیخ کا عالم غیب ہونا ضروری بھی تو نہیں ہے, عالم غیب ہونا ضروری نہیں ہے, اسی لیے تو اطلاع کرنی پڑتی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ شیخ کا تو عالم عیب ہونا ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے عیب کو, اپنے مریدوں کے عیب کو جانے. تو اپنے مریدوں کے عیب تو اس وقت معلوم ہوں گے جب مرید خط لکھے گا. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ مرید یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت ٹھیک جا رہا ہوں, اور اطلاع اور اتباع نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہاں ہے وہیں بیٹھا رہتا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے پیچھے جا رہا ہو. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے جا رہے ہوتے ہیں مگر کوئی چھوٹی سی آریز کی وجہ سے ان کی گاڑی رکی ہوئی ہے, کچرا آ گیا ہے جس کی وجہ سے, اطلاع اتباع نہیں کرتے تو وہیں پڑے رہتے ہیں, سلوک طے نہیں ہوتا ان کا. اس لیے اطلاع اتباع بہت ضروری ہے. کبھی کبھی مرید کو خود کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کیا بیماریاں ہیں, جب شیخ پر لکھتا ہے تو شیخ خط پڑھ کر کے اس بیماری کو بھانپ لیتا ہے. پھر اطلاع کے نتیجے میں شیخ کی توجہ نصیب ہوتی ہے. اگر کوئی قابل اصلاح چیز ہے تو شیخ فکر کرتا ہے, فکر کر کے دعائیں کرتا ہے, جب وہ موجود ہوتا ہے تو نصیحتیں کرتا ہے, کبھی ڈائریکٹ کرتا ہے, کبھی مجموعی طور پہ نصیحت کرتا ہے, کبھی پیار محبت سے کہتا ہے, کبھی ڈانٹ کر کہتا ہے, کبھی ناراض ہو کر کہتا ہے, کبھی ہمدردی کے ساتھ کہتا ہے. اب پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا شیخ. اس لیے اطلاع, اطلاع ضروری ہے. شیخ کی طرف سے جواب ملے یا نہ ملے, ہمیں شیخ نے جو وقت مقرر کیا ہے کہ ہر مہینے یا ہر ڈیڑھ مہینے کے بعد یا ہر دو مہینے کے بعد, بہت سے مرید ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک دم جذبے میں آ جاتے ہیں اور جذبے میں آ کر کے خط لکھتے ہیں کہ اب ہم آپ پر ہر ہفتے خط لکھیں گے تاکہ ہمارا نفس قابو میں رہے. تو کیا شیخ فارغ بیٹھا ہوا ہے کہ ہر ہفتے آپ کے خط پڑھتا رہے؟ بعض لوگ روزانہ ہی حالات لکھتے ہیں, روزانہ. یعنی روزانہ کا کیا مطلب, وہ اپنے اوپر یہ لازم کر لیتے ہیں کہ چونکہ شیخ کو منہ دکھانا ہے اس لیے کر, ورنہ میں تو روزانہ 24 آور. تو سارے ہی مرید اگر اپنے ایک ایک صفحے شیخ پر لکھے تو شیخ کیا کرے گا؟ شیخ نے جو سٹیپیولیٹ کیا ہے اس کے مطابق, باقی خود پہ کنٹرول کرو, خود پہ کنٹرول کرو. سیکھنا تو یہی ہے نا کہ خود پر ہمارا کنٹرول آئے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کچھ حالات اچھے ہوں تو لکھوں. اب آج مجلس ختم ہوگی, پکا ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ کل سے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے, اور پھر میں تو ایک ہفتے تک اچھے گئے اور پھر فیل ہو گئے, تو کہ نہیں نہیں اب تو دو مہینے کے بعد لکھ کر کیا کریں گے. حالات اچھے, بھائی حالات اچھے نہ ہو اسی وقت تو لکھنا ہے, डॉक्टर के पास कब जाते हैं, तंदुरुस्त होते हैं उस वक्त या बीमार होते हैं उस वक्त? अच्छे हालात भी लिखो, बुरे हालात भी लिखो। हो सकता है कि जिन हालात को हम बुरे समझ रहे हैं वो अच्छे हों और जिनको हम अच्छे समझ रहे हैं वो बुरे हों। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखें, तो ये भी तो लिखने की चीज है ना कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या लिखूं, ये भी लिखो, ये भी हाल है, ये भी हाल है। हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर एक शख्स ने अर्ज किया कि हजरत खत लिखने को तो बहुत दिल चाहता है लेकिन मेरा कोई हाल ही नहीं है तो मैं क्या लिखूं। हजरत फरमाया ये भी एक हाल है, ये भी एक हाल है, ये भी एक तुम्हारा स्पिरिचुअल कंडीशन है, वो भी लिखो। तो भाई शेख भी चाहिए और शेख ढूंढ लेने के बाद फिर जो तकाजे हैं उन तकाजों को पूरा भी करना है, उन तकाजों को पूरा भी करना है। अल्लाह ताला शानो हम सबको अमल की तौफीक दे। हमारी जो दो तकरीरें छपी हैं एक रिसाले में, कीमती तोहफा बराए तालिबीन तज़किया, कीमती तोहफा बराए तालिबीन तज़किया, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी हो गया है, प्रेशियस गिफ्ट फॉर द सीकर्स ऑफ स्पिरिचुअल रेफॉर्मेशन। ये हासिल करो, हमारी तज़किया की वेबसाइट पर भी है और पढ़ो उसको पूरा, और पढ़ो और उसमें जो जो तकाजे हैं वो पूरे करो। और जो लोग मुनसिब मुनसलिक नहीं है, किसी और शेख से मुनसलिक हैं, वो भी इसको पढ़ो और इसको पढ़ करके फिर अपने शेख के साथ वो मामला करो जो करना चाहिए। और इससे पहले वो पढ़ो जो मुख्तसर है, इस्लाह का आसान नुस्खा, सबको पढ़ना चाहिए। वो मुझसे मुनसलिक हो, किसी और से मुनसलिक हो, या किसी से भी मुनसलिक ना हो, सबके लिए इस्लाह का आसान नुस्खा, वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाए, अन ईजी प्रिस्क्रिप्शन टू सेल्फ रेक्टिफिकेशन, अन ईजी प्रिस्क्रिप्शन टू सेल्फ रेक्टिफिकेशन, उसको पढ़ो भाई। आखिरत के लिए तो करना पड़ेगा ना। एक मामूली सा हमारा प्रोसीजर होता है हॉस्पिटल में, और वहां से जो बुकलेट्स देते हैं वो पूरा अजव्वल था आखिर तीन तीन चार चार मरतबा पढ़ते हैं क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए। यहां तो मामला आखिरत का है, आखिरत का है। बहुत बड़े प्रोसीजर्स आने वाले हैं, मौत का वक्त, जान कुनी का आलम, कब्र में जाना है, हशर का दिन होगा, फिर अल्लाह के दरबार में खड़ा किया जाएगा, फिर पुरसिरात पर से गुजरना है। इस्लाह की फिक्र करो, तज़किया की फिक्र करो, बातिन कैसे दुरुस्त हो जाए उसकी फिक्र करो। अल्लाह ताला शानुहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये इत्तला और इत्तबा बहुत जरूरी है। इत्तला एक तो ये कि ये चार काम करो, इन चार कामों को करने के बाद इत्तला करो, और इत्तला करने के बाद फिर इत्तबा करो। जो शख्स इन पांच कामों को खुलूस के साथ करता है, इस्लाह तो उसकी होगी ही, लेकिन इसका इस्लाह के लिए चूंकि शेख सबब है, तो इन पांच कामों को जो भी खुलूस के साथ करता है उसे अपने शेख की तवज्जो खुद ब खुद हासिल हो जाती है। अल्लाह उसके कल्ब को मुतवज्जह कर देते हैं। भाई शेख यही तो देखना चाहता है अपने मुरीदों में कि वो मुजाहदा कर रहा हो और वो लायानी से बच रहा हो और वो जिक्र का एहतमाम कर रहा हो और वो सोहबत साले का एहतमाम कर रहा हो, शेख की मजलिसों का भी एहतमाम कर रहा हो, और इत्तला और इत्तबा हो तो खुद ब खुद दिल मुतवज्जे हो जाएगा, खुद ब खुद दिल मुतवज्जे हो जाएगा। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। तो असल जो बात कर रहा था वो ये अर्ज कर रहा था कि जब अकल भी कामिल हो और तकवा भी साथ हो, अकल और तकवा ये दोनों जब साथ जमा हो जाए। देखो आंखें बिल्कुल ठीक है, दुनिया के टॉप आई स्पेशलिस्ट को आंखें दिखाई तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, और रात को अंधेरे में ठोकर खा गई और गिरे, हाथ भी टूट गया, पांव भी टूट गया, सर में भी चोट आई। तो दूसरे दिन फोन करके वो डॉक्टर को कहा कि तुम कैसे डॉक्टर हो, तुम तो कह रहे थे कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, बहुत पावरफुल। कि नहीं, आंख कुछ काम नहीं करेगी जब तक कि दूसरी रोशनी नहीं होगी, दूसरी रोशनी नहीं होगी तो इन आंखों के होते हुए भी ठोकर खा सकता है, इसलिए अकल आला दर्जे की है लेकिन तकवे का नूर नहीं है तो ऐसा शख्स बहुत बड़ी ठोकर खा सकता है दीन के मामले में, दीन के मामले में बहुत बड़ी ठोकर खा सकता है। ये जितने बातिल फिरके के बानी थे उन सब के पास अकल तो थी लेकिन तकवा नहीं था, अकल थी तकवा नहीं था। तो अकल थी और तकवा नहीं था इसलिए उन्होंने अकल की रोशनी में देखा, लेकिन तकवा नहीं था तो वो दूसरा अंधेरा था तो ठोकर खा गई। तो कोई मोतजली हो गया, तो कोई मुर्जी हो गया, कोई कर्रामी हो गया, ये अलग अलग फिरकों में बढ़ गए सारे। ये मुब्तदीन की कितनी जमातें पैदा हो गई। इसलिए तज़किया, और जब तज़किया हो जाता है अकल भी कामिल है और तज़किया भी माशाल्लाह, अकल भी कामिल और तज़किया भी माशाल्लाह, तो फिर उसे वो चीजें नजर आती है जो दूसरों को नहीं, बिल्कुल क्लियर। तो जब हजरत हाजी साहिब रहमतुल्लाह ने हजरत गंगोई रहमतुल्लाह पर लिखा कि बहुत दिनों से अहवाल मालूम नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं किया और मेरे अहवाल किया, मैं तो लिखी इसलिए नहीं रहा था कि मेरे हालात ही किया है, असल में ये बहुत गलबा था हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह पर तवाजु का उस वक्त बहुत गलबा था, इसलिए ऐसा शर्म आती थी उनको कि मैं क्या लिखूं। लेकिन अब जब हजरत ने हुक्म ही फरमाया है तो ये है मेरे अहवाल, ये है मेरे अहवाल। और फिर जो है हजरत ने उसमें जो अहवाल लिखे उसमें से एक बात क्या लिखी कि बंदे को नुसूस में किसी भी जगह पर तारुज नजर नहीं आता। भाई मुझे भी नजर आता है, आपको भी नजर आता है कि एक जगह पर अल्फसनति मिम्मा तउद्दून है, एक जगह पर खमसीन अल्फसन है, 50,000 और एक हजार में फर्क है। हमें हदीस में तारुज नजर आता है कि एक जगह पर आमीन बिल सिर है, एक जगह पर आमीन बिल जहर है, और हमें शुरुआत को देखना पड़ता है कि नहीं? क्यों भाई? इसलिए कि हमारी बातिन की रोशनी उतनी नहीं है जितनी हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की थी। मुझे नजर नहीं आता कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों भाई? इसलिए कि बातिन की आंखें बहुत क्लियर थी। तो उधर भी नुक्स नहीं, इधर भी नुक्स नहीं, तो नुक्स नजर कैसे आएगा, नुक्स नजर कैसे आएगा? इसी वजह से गुज़िश्ता हफ्ते की नशिस्त में शायद मैंने मौलाना अजीजुर रहमान साहिब रहमतुल्लाह अलैह का वाकिया नकल किया कि एक कुरान की आयत पर उनको शुबा हुआ। तो मुफ्ती अजीजुर रहमान भी बहुत बड़े आदमी थे लेकिन हजरत गंगोही के मकाम के नहीं थे, उनको जितना क्लियर नजर आ रहा था इनको नहीं। तो ये जब वहां पहुंचे तो उनको दो आयतों में तारुज नजर आ रहा था, दो आयतों में टकराव था, दो आयतों में कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा था। वो समझ रहे थे, सब उलमा समझते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन कुछ नहीं है, मेरे समझ की कमी है। तो सीधे गए गंगो, और गंगो हजरत वजू फरमा रहे थे, और वजू करते करते पूछा तो उन्होंने अपना इश्काल पैदा किया कि इन दो आयतों में तो कॉन्ट्रडिक्शन है लेकिन वो तो इस मकाम पर पहुंचे हुए थे कि मुझे नुसूस में कुरान या हदीस में कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आता। तो फर उन्होंने उसको हल कर दिया, कहा कि नहीं नहीं ये तुम्हारी गलत फहमी ही ऐसा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान और हदीस में कहीं भी इश्काल पैदा हो तो नुक्स उधर नहीं होता, नुक्स किधर होता है? हमारी तरफ नुक्स होता है, हमारी तरफ नुक्स होता है। जो मुनकिरीन हदीस है, एक टोला है जो हदीसों का बिल्कुल इनकार करता है, वो कहता है कि सिर्फ कुरान हमारे लिए काफी है, कुरान हिदायत की किताब तो है, कुरान हमारे लिए काफी, हदीसों की कोई जरूरत नहीं है, हदीसों की कोई जरूरत नहीं। देखो हदीसों की कोई जरूरत नहीं, ये इस नतीजे पर क्यों पहुंच गए? इससे कि अकल से सोचा तकवे की रोशनी नहीं थी इसलिए ठोकर खा गए। का हदीस की जरूरत नहीं, असल तो कुरान है। तो कुरान में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। कुरान में ये नहीं है कि जोहर का वक्त किया है, असर का वक्त किया है, मगरिब का वक्त किया है, ईशा का वक्त किया है, फजर का वक्त किया है, कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, कौन सा वक्त मुस्तहब है, कौन सा मकरूह है, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। कुरान में ये कहीं नहीं लिखा है कि जोहर की कितनी रकातें हैं, फजर की कितनी रकातें हैं, ईशा की कितनी रकातें हैं, मगरिब की कितनी रकातें हैं, असर की कितनी रकातें हैं, सुन्नतें कितनी है, फर्ज कितनी है, वाजिब कितनी है, कुछ भी नहीं लिखा है। कुरान में तो सिर्फ इतना है कि वुजू करो, लेकिन वुजू को तोड़ने वाली चीजें क्या किया है नहीं लिखा है। कुरान में तो सिर्फ इतना है कि जकात अदा करो, लेकिन कितना अदा करना है, सोने पर कितना जकात, चांदी पर कितनी जकात, बकरियां हैं तो कितनी जकात, गायें हैं तो कितनी जकात, खेती की पैदावार में से कितनी, कुछ नहीं, तफसील नहीं है। तो कैसे अमल कैसे करेंगे आप? अमल करने के लिए हदीसों को देखना लाजिमी है, ये तो मोटी सी बात है। लेकिन वो मुनकरीन हदीस यही कहते हैं, इसलिए कि उनके पास अकल है मगर तकवे की रोशनी नहीं है, तो उनको नजर आता है क्या कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है हदीसों में। तो एक एतराज वो ये करते हैं कि हदीसों के अंदर तो कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है, तो इस पर अमल कैसे किया जाए, इसका एतबार किया है? तो हमारी तरफ से जवाब क्या है? हमारी तरफ से जवाब यह है कि हदीसों में कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वो हमारी अकल की कमी की वजह से, वो तकवे का नूर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ठोकर खाते हैं और हमें कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। वरना हदीसों में कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कुरान में कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हदीस पर किसी जगह पर कोई इश्काल नहीं है, कुरान पर किसी जगह कोई इश्काल नहीं है। जहां कहीं सवाल कायम किया है, जहां कहीं किसी ने सवाल कायम किया है, वहां उलमा ने जवाब दिया है। किन उलमा ने? उन उलमा ने जवाब दिया है जिनकी अकल भी कामिल थी और जिनका तकवा भी कामिल था, बसीरत वाले उलमा। तो ये एक अहम बात मुझे कहनी थी कि कुरान और हदीस में कहीं भी एतराज नजर आए, इश्काल नजर आए, कॉन्ट्रडिक्शन नजर आए, तो वो कुरान और हदीस की कमी की वजह से नहीं है बल्कि हमारी कमी की वजह से है। लिहाजा हमें क्या करने का? आमन्ना व सद्दकना कहने का, कि हम ईमान ले आए और हमने तस्दीक कर ली और सही वही है जो अल्लाह ने फरमाया, सही वही है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारी सोच की कमी हो सकती है और हमारी अकल की कमी हो सकती है, हमारे तकवे की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, वरना है वही। और फिर उलमा की तरफ रुजू करो, उलमा की तरफ मुराजात करो। हम तो यहां तक कहते हैं कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट किसी बात पर मुत्तफिक हो जाएं और वो ये कहे कि तहकीक यही है और हदीस में उसके खिलाफ लिखा है, तो हमारे जहन में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि हदीस में गड़बड़ है, बल्कि हमारे जहन में ये ख्याल आना चाहिए कि इन साइंटिस्टों की तहकीक में गड़बड़ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों इनको रुजू करके ये कहना ही पड़ेगा कि हमारी तहकीक में गलती थी, और फिर वो नई तहकीक पेश करेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक होगी। इसलिए कि सूरज और चांद बेनूर हो सकते हैं, जमीन ऊपर तले हो सकती है, समंदर खुश्क हो सकते हैं, लेकिन आमेना के यतीम लाल की नबूवत वाली जुबान से निकली हुई बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको कुरान पर और हदीसों पर पूरा एतिमाद नसीब फरमाए और अल्लाह ताला शानहु पूरा यकीन और पूरा ईमान नसीब फरमाए और हमें कुरान और हदीस के साथ पूरी वाबस्तगी नसीब फरमाए और कुरान और हदीस से फुकहा ने जो ये फुकहा कौन है? फुकहा जिनको अल्लाह ताला शानहु कामिल अकल देते हैं और कामिल तकवा देते हैं, तो उनको जो कि सब कुछ नजर आता है, इसलिए वो उसमें से मसाइल का इस्तिंबात कर करके हमें कहते हैं कि ये जायज है, ये नाजायज है, ये फर्ज है, ये वाजिब है। तो अल्लाह ताला कुरान से भी वाबस्तगी नसीब फरमावे, हदीस से भी वाबस्तगी नसीब फरमावे और फुकहा और फिकह से भी वाबस्तगी अता फरमावे। इमाम अबू हनीफा से, इमाम मालिक से, इमाम शाफी से, इमाम अहमद इब्न हंबल से रहिमहुमुल्लाहु तआला व रदियल्लाहु अन्हुम और इसी तरह दिगर जो फुकहा हैं और बड़े बड़े उम्मत के मुफ्तियान इजाम हैं, मुफ्तियान किराम हैं, अल्लाह ताला शानहु उन सब से अकीदत, उन सब से मोहब्बत, उन सब से वाबस्तगी अता फरमावे और उनकी बातों को कबूल करके हिर्ज़े जान बनाकर अपनी आखिरत बनाने के लिए उन बातों पर अमल करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही।